चारित्रम और शमना लेक्चर नंबर 19। बहुत सारे प्रश्न है, यानी लोग बहुत विचार कर रहे हैं, इसका अर्थ है ना, अच्छी बात है। कल जो मैंने बात बताई थी, आपने प्रश्न पूछा था डॉली कि पुरुष वेद की भी क्या उपदिष्टा भी होती है, तो यहाँ तो अभी तक तो उसका वर्णन नहीं आया था, पर आगे चलकर वहाँ स्पष्ट रूप से बताया कि उसकी भी होती है। यानी मेरे कहने में कल भूल हो गई है, वो पहले देखते हैं। देखो पेज नंबर उसके लिए 211, क्योंकि पहले उसकी चर्चा नहीं की थी, पर बाद में उन्होंने पूरा उपसंहार करते हुए पुरुष वेद की भी उच्चिष्टा भी होगी, क्रोध की भी होगी, मान की भी होगी, माया की भी होगी, बादल भोग की भी होगी। सूक्ष्म दृष्टि तो अपने रूप से उदय में आकर नष्ट हो जाएगा, उसकी अंतिम उच्चिष्टा होगी, अन्य रूप से होकर उदय में नहीं आ। तो ये बात 211 पेज पर 301 नंबर की गाथा में लिखा है, उसको पहले पढ़ेंगे, अपना विषय फिर दोबारा देंगे। यानी यहाँ पूरा इसको ले, पूरे सर्वाणु जिसको कहेंगे, एक साथ संहार करके सभी की बात एक साथ बताइए। यहाँ हमें वो प्रूफ मिला कि पुरुष वेद की भी उच्चिष्टा भी हो जाती है। देखो यहाँ पुरुष वेद आदि का पेज नंबर 211, 301 गाथा की टीका। पुरुष वेद आदि का एक समय का आवली मात्र निषेकों का द्रव्य उच्चिष्टावली रूप है। पुरुष वेद आदि का है, पुरुष वेद का संगलन क्रोध का संगलन मान का माया का लोक का सबका समझना। वह क्रोधादि यानी पुरुष वेद आदि, और वो उसमें किस में जाते हैं, संगलन क्रोधादि में जाते हैं। यानी पुरुष वेद है क्रोध में जाएगा, क्रोध है वो मान में जाएगा, मान है वो माया में जाएगा। यानी यहाँ पुरुष वेद आदि लिखा और वहाँ जाता किसमें, तो क्रोधादि में जाता है। वह क्रोधादि कहाँ तक, सूक्ष्म पृष्टि तक के उदय रूप निषेकों से लेकर, इसका अर्थ है पुरुष वेद है क्योंकि सूक्ष्म पृष्टि तक बताया, तो पुरुष वेद है संज्वलन क्रोध में जाएगा, उच्चिष्टावली इस रूप से उदय में आएगी। संज्वलन क्रोध की उच्चिष्टावली है, संज्वलन मान रूप से उदय में आएगी, संज्वलन मान की उच्चिष्टावली संज्वलन माया रूप से उदय में आएगी, संज्वलन माया का संज्वलन लोभ जो बादल लोभ है, और बादर लोक की जो उच्चिष्टावली है वो सूक्ष्म पुष्टि रूप से उदय में आएगी। तो पुष्टि अंत अंत का है, सूक्ष्म पुष्टि की बात नहीं उठाई। तो कहते उदय रूप निषेकों से लेकर प्रथम स्थिति के निषेकों के साथ तद्रूप परिणमन कर, यानी जो पुरुष वेद है वो तद्रूप यानी क्रोध रूप परिणमन होकर पक्ष के यानी उदय रूप होते हैं। पुरुष वेद के उच्चिष्ट मात्र निषेक रहे, यानी जो आवली का मैं समय इसलिए कहा क्योंकि उदय रूप जो निषेक है वो अन्य रूप हो जाता है, इसलिए उसे एक समय कम आवली इतना ऐसा कह दिया। तो कहते हैं उच्चिष्ट मात्र निषेक रहे वे तो संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति में तद्रूप परिणमित होकर उदय में आते हैं। प्रथम स्थिति यानी केवल प्रथम निषेक रूप से होकर ही उदय में आता है। वैसे ही संज्वलन क्रोध के संज्वलन मान में इत्यादि क्रम से बानर लोक के उच्चिष्टावली के निषेध सूक्ष्म दृष्टि में तद्रूप परिणमित होकर उदय में आते हैं उसका पहले वर्णन किया है। परंतु ये जैसे क्रोध का उन्होंने वर्णन किया वैसे पुरुष वेद की बात पहले नहीं उठाई थी, इसलिए कुछ कन्फ्यूजन हुआ उसमें होता है या नहीं होता। यानी जब उच्चिष्टावली प्रमाण निषेध शेष रह जाता है आवली प्रमाण, तब जाके पुरुष वेद का उदय भी और बंद भी रुक जाता है, ये उसका। यानी भले वो पुरुष वेद के परमाणु है एक आवली तक के निषेध, परंतु उसका उदय नहीं होगा तो वहाँ बंध भी नहीं होगा, ये उसका अर्थ होता है। जैसे हमने क्रोध मान माया सब में देखा। अब थोड़े प्रश्न है उसको लेकर फिर हम अपना विषय बढ़ाएंगे। हर सम्यक दृष्टि जीव नियम से क्षपक श्रेणी मानने के पूर्व उपश्रम श्रेणी चढ़ेगा ही, ऐसा प्रश्न है? बिल्कुल नहीं। ऐसा भी हो सकता है एक बार भी उपश्रम श्रेणी न चढ़ी हो वो जीव क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष जा सकता है। ऐसा भी होता है कि कोई जीव एक ही भाव में अधिक से अधिक दो बार क्षपक श्रेणी उपश्रम श्रेणी चढ़ता है, अधिक नहीं बार चढ़ता, दो बार मैक्सिमम, और पूरे जो अर्धपुंगर परावर्तन का है तो उसमें चार है, उससे अधिक वो उपश्रम श्रेणी चढ़ता नहीं। उस कुछ नियम है ऐसे, परंतु उपश्रम श्रेणी चढ़ के उतरना ही चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्या उसमें कुछ बात अलग है क्या? हाँ कुसुम, उसमें कुछ अलग लिखा है? मोहनी की 21 प्रकृतियों का अंतर का कार्य अनिवृत्तिकरण में ही शुरू होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो अंतर का कार्य होता है जैसे हमने प्रथम उपशम में देखा था वहां पर भी अनिवृत्तिकरण परिणाम में ही अंतर हुआ था, यहाँ पर भी अनिवृत्तिकरण परिणाम को ही अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहा है। उसके संख्या बहुभाग बीतने के बाद हमने वो स्थिति बंधाक्षरण देशवातिकरण क्रमकरण वगैरह वो सब बातें देखी है, तो उसके पश्चात यहाँ अंतरकरण हुआ है, यानी अनिवृत्तिकरण में ही अंतर होता है। उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद उतरकर सातवें गुणस्थान में आकर फिर से उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो वह छठे सातवें गुणस्थान में आकर चढ़ेगा कि सातिशय प्रमत्त दोबारा प्रश्न चढ़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो ग्यारहवें में से दसवें नौवें आठवें सातवें में आता है। तो इनका प्रश्न ये है सातवें तक आया मैंने अभी उसका अध प्रवृत्त में उलट कर आया नीचे, तो उसी में से फिर उपशम श्रेणी चढ़ेगा क्या? तो कहते नहीं, सातवें में से छठे में भी आएगा और वो द्वितीय उपशम उसका नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा उपशम द्वितीय उपशम में से वो वेदक समय दृष्टि हो जाएगा। वेदक समय दृष्टि होने के बाद भले अनंतानुबंधी का संयोजन नहीं होगा क्योंकि वो मिथ्यात्व में तो नहीं जा रहा है, अनंतानुबंधी तो विसंयोजित है पड़ी है, अब वो दोबारा द्वितीय उपशम करेगा और फिर श्रेणी चढ़ेगा। फिर भी ये सारा ही कार्य एक अंतर्मूर्त में होता है, यानी दो बार उपशम श्रेणी के बीच में अंतर कितना पड़ता है? तो एक अंतर, परंतु उसको दोबारा वो द्वितीय उपशम करेगा, दोबारा हजारों बार छठा सातवां करेगा और फिर श्रेणी चढ़ेगा। ये सब बाकी तो यानी उसी द्वितीय उपशम के काल में दोबारा श्रेणी नहीं चढ़ी जाएगी। आया उतना ही रहता है। अब ये प्रश्न है प्रथम उपशम सम्यक्तों में अंतर किया था क्योंकि वहां जीव को सम्यक्त प्राप्त होता है, अब यहाँ अंतर क्यों कर रहा है? जीव तो ऑलरेडी द्वितीय उपशम करके श्रेणी चढ़ रहा है, उसने दर्शन होने में अंतर किया था, वो तो सम्यक दृष्टि था। कौन सा वेदक समय दृष्टि? अभी भी समय दृष्टि रहा क्योंकि द्वितीय उपशम किया है, पर द्वितीय उपशम के काल में भी चारित्रमों की उपशम ना कर, वहां तो दर्शन होने के कर्मों का पूरा उदय का अभाव कर दिया था, तो उसको द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहा था। अभी यहाँ औषमिक चारित्र प्राप्त करने वाला है, ग्यारहवें गुणस्थान तक जाते जाते सभी कर्मों का उपशम होने पर किसी भी कर्म का उदय ना कषायेगा ना न कषायेगा, सभी उपशमित हो जाएंगे और पूर्ण वितरागे होने वाला है। वहां तो सम्यक्त्व की बात थी, अब यहाँ चारित्र की बात है, इसलिए ये सम्यक्त्व की बात है द्वितीय उपशम वाली। समझ में आते है किसका प्रश्न है? समझ में आई बात? हाँ, कर्मों में होने वाले अलग अलग प्रोसेस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी जी जान से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा। फिर भी क्या विषय क्या कहना चाहते हैं, ये समझने में कोई भूल रह जाए तो क्या यह ज्ञान सम्यक्त्व में बाधा बनेगा? ऐसा जो जिसको कहेंगे ना, औदयिक अज्ञान जिसको कहेंगे, एक होता है एक सौक्षमिक अज्ञान, एक होता है औदयिक अज्ञान, मालूम ही नहीं क्या है, बोलो। सौक्षमिक अज्ञान का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। सौक्षमिक अज्ञान किसको कहेंगे? मिथ्या दृष्टि के ज्ञान जो भूमती कुशुदी जो ज्ञान है उसको कहेंगे सौक्षमिक अज्ञान, यानी वो जान तो रहा है परंतु वो मिथ्या ज्ञान है, वहाँ मिथ्या ज्ञान को अज्ञान का। और औदयिक अज्ञान किसको कहेंगे? कि हमारा उस विषय संबंधी ज्ञान नहीं, जिसे आप कन्नड़ भाषा नहीं जानते, ये लोग जान रहे उनका कन्नड़ भाषा संबंधी शोषण चल रहा है और आपका उस संबंधी अज्ञान चल रहा है, तो जो हम विषय नहीं जान रहे। अब यहाँ करणानियोग का जो इतना कठिन विषय, इतनी सूक्ष्मता जानने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी सम्यक तो हो सकता है। जितना अधिक ज्ञान होगा इतनी विशेषताओं का, उतनी क्लैरिटी, उतनी ज्ञान की निर्मलता और अधिक होगी, वो तो सहकारी होगा ही होगा, परंतु वो नहीं हुआ इसलिए सम्यक्त्व में बाधा आती है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी आता है ना, अजान मानो भूल नहीं होगा, हमारी भूल से आपकी भी समझने में कुछ भूल रह जाए, वो तो आपने तो ये सत्य माना है, वो सम्यक्त्व में बाधा नहीं। ऐसा सम्यदृष्टि भी हो सकता है, परंतु यदि उसको आगम दिखाए, देखो हम आप ऐसा मानते थे मगर ये बराबर नहीं है आप जो कह रहे हैं, जैसे हमारी कितनी मान्यताओं में भूल रह गई है ना, तो किसी ने बताया ये आगम में ये प्रूफ है, और आप अगर तब भी अपन हट चालू रखते हैं तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो उसी समय मिथ्यात्व में चला जाता है, क्योंकि आगम को नहीं मान रहा, अपना हट चालू रखता है। ये हो सकता है कि अपने अज्ञान से या समझने में भूल है, या हमने जिनसे समझा था उनको संबंधी ज्ञान थोड़ा अल्प था, तो हम उसी को सर्वज्ञ की वाणी समझकर समझ रहे कर्णानियोग वगैरह समझे, सात तत्व की भूल माफ नहीं होगी। हाँ, नहीं तो हमारे गुरु ने सात तत्व के अन्यथा उन्होंने बताया कि शुभ भाव से धर्म होगा, हम भी मान लिया तो उसको सम्यक दर्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। उस प्रयोजनभूत तत्व में कोई भूल रह जाए तो उसको सम्यक तो नहीं होगा, वो तो बात गारंटी थे। परंतु ऐसे गणित संबंधी, कर्णानियोग संबंधी, ऐसे कुछ विशेष बातें हैं तो उस संबंधी, अभी गुणश्रेणी ऐसी होती कि वैसी होती, उस संबंधी समझो कुछ भूल रहेगी तो उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है।
आपने भी कहा था कि जैसे कि उच्चम श्रेणी से उतर कर वो वापिस उसको छठे दाखिले में आकर इसको वापिस विजय सम्यक्त बनेगा, और विजय सम्यक्त वापिस उपयोग को सम्यक् करेगा,
बिल्कुल करेगा,
तो फिर वापिस इसको, लेकिन अनंत जैसे हमने चढ़ते हुए देखा था कि उसने अनंत नंदी की भी संयोजना की थी, तो इसको ये प्रोसेस की आवश्यकता नहीं रहेगी।
वही तो भाई वही बताया, जिसने एक बार सम्यक् दृष्टि होते हुए अनंतानुबंधी की विसर्जना की है, जब तक उसका सम्यक् दर्शन चलता जाएगा, वेद सम्यक्त भी मान लेते हैं, किसी ने नरक में किया है और नरक से निकलकर वो फिर मनुष्य हुआ, मनुष्य से देव वगैरह मनुष्य के भोग करता रहा, कितने कांड देखे ना, 66 साल तो समय तो बना रह सकता है, तो उसके फिर दोबारा अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं होगी, क्यों है ही नहीं सत्ता में, सत्ता में कब आ सकता है? दोबारा अगर मिथ्यात्व में जाए तो अनंतानुबंधी का बंद होकर और उल्टा संक्रमण होकर सत्ता बनेगी, अभी उसकी सत्ता है ही नहीं, तो उसको डायरेक्ट यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजन किया हुआ वेदक समय दृष्टि है, उसके डायरेक्ट तीनकरण से द्वितीयोक्षण सम्यक्त होगा, उसके विसंयोजना का कोई अर्थ ही नहीं ना, वहां सत्ता ही नहीं तो विसंयोजना किसकी करेगा? एक बार विसर्जना होने के बाद जब तक वो मिथ्यात्व में नहीं जाता तब तक फिर उसको अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं तैयार होगी।
उतरने के टाइम पर जैसे हमने अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के अनुरोध को भी दबाया है ऊपर श्रेणी में, तो फिर उतरने के बाद फिर वो लोग ऐसे कैसे ही वहाँ पर भी ऐसे कैसे ही रहेंगे?
वो अभी उतरने की बात करेंगे बाद में, अभी तो अंतर करने में बहुत कंफ्यूजन है, उसका विषय अपना आगे बढ़ेगा। क्या ये उत्सुकता थी ना आगे का पड़े नहीं समझे, साड़ी लेने जाते दुकान में तो क्या करते हैं वो दुकानदार एक कुछ बता रहे हैं और हमारी नज़र उधर है,
देखो।
हाँ ये कुछ बातें पर पूछेंगे क्या ये सही है। हाँ ठीक है, अभी हम अपना विषय तक चलते आ रहे हैं। पेज नंबर था अपना, ये मैंने पुरुष वेद की भी उच्चिष्टावली रहती है बात बता दी। हाँ हमारा पेज नंबर चल रहा था 193 पर आए थे। हाँ कृष्टि कारक तक आ गए थे। ये कृष्टि कारक तक आने के पहले जो जो हमने कल देखा ना, अंतर करने के बाद पहली स्थिति कैसे होती है, फिर क्रम से मान आया, माया आया, लोभ है, उसकी बात थोड़ी बोर्ड के आधार से फिर समझेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं बोर्ड पर। माइक चालू है, ऑन है, ऑन। देखो जब अंतर किया था, ये अंतर करने के पहले जो सारे प्रोसेस है वो हमने देखे थे, तो स्थिति बंधा कर्म हुए थे, क्रम कर्म हुआ था, देखा कि कर्म हुआ, ये सभी प्रोसेस पर जब अंतर करने का काल है तब और उसने अंतर समाप्त किया। अंतर किया है नहीं, क्या किया, ये उदयमुख है पुरुष वेद और सर्वलोक क्रोध। जब अंतर करने का कार्य शुरू किया या अंतर किया तो ये सारे यहाँ सभी प्रकृति विपरियाँ होकर 21 प्रकृतियाँ। अब 21 प्रकृतियों में से उदयमुख दो प्रकृतियाँ हैं, एक पुरुष वेद हमारे संवर को जब अंतर करने की शुरुआत की थी तो ये निषेध रचना पूरी यहाँ से यहाँ तक थी। अंतर करने के समय में यहाँ का जो द्रव्य है जो सब निषेध के परमाणु है वो इसके पहले स्थिति में गए, क्रोध के भी पहले स्थिति में गए, नए बनने वाले पुरुष वेद और संवर क्रोध में भी गए, इस तरह से अंतर हो गया। तो ये अंतर करने के बाद जो पोजीशन है वो यहाँ बता रहे हैं। पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में तो अंतर बहुत बड़ा किया, अनुदैविक प्रकृतियों में केवल आगे मात्र नीचे के निषेक शेष है, वो भी संक्रमण के द्वारा वो भी नष्ट होने वाले हैं। अब यहाँ जो पुरुष वेद की स्थिति कितनी है, तो पुरुष वेद का जितना उदय काल है उससे एक अवधि प्रमाण जाता है, क्योंकि अंतिम अवधि उच्चिष्टावली रूप से रहने वाली है। पुरुष वेद की प्रथम स्थिति कितनी बनी, अंतर्मुख, कितना अंतर्मुख, यहाँ से लेकर अंतर करने के बाद जितना उसका उदय काल बाकी है पुरुष वेद का वह प्लस एक अवधि, और यहाँ से लेकर यहाँ क्रोध की प्रथम स्थिति कितनी बनी, क्रोध की तो यानी क्रोध का उदय तो पहले भी चल रहा था सात्विक संस्थान से, परंतु यहाँ इस पोजिशन पर अंतर करने के बाद क्रोध की प्रथम स्थिति कितनी रही, यहाँ से लेकर जो क्रोध का वेदक काल है प्लस आगे, क्योंकि वो अवधि उच्चिष्टावली से रहने वाली है। अभी ये जो पोजीशन है ये जो पुरुष वेद से क्रोध की जो प्रथम शैली थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उसका जिसको कहेंगे उदय वगैरह जीतने के बाद भी ये क्रोध का उदय चलने वाला है। अब ये पोजीशन है अंदर के बाद, अब यहाँ अंदर शुरू किया है यहाँ पर, तो मुझे जरा दस्तक देना है पुस्तक के नीचे, यहाँ अंतर हुआ है। अभी अंतर के बाद ही क्या हुआ, प्रथम समय से हमने देखा था साफ करण चालू हो जाएगा, अंतर करने के बाद वो साफ करण के अभी हम रिविजन नहीं करेंगे, वो लता बाल होते बंदर होते होते वो सब यहाँ से शुरू हो जाए। अब केवल अभी उपशम की चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले नपुंसक वेद का उपशम हो जाता है। नपुंसक वेद कहाँ पड़ा है, द्वितीय स्थिति में पड़ा, उसका प्राय नहीं बनाया, वो द्वितीय स्थिति में पड़ा है, वो उसका उपशम होता है, पहली पाली दूसरी पाली तीसरी पाली, उसी समय उसका संक्रमण भी हो रहा है पुरुष वेद में, और यहाँ की कंडीशन नष्ट हो जाएगी पुरुष वेद यहाँ पर, यानी वो पुरुष वेद का उदय चल रहा है यहाँ पर, उसकी उदयना वगैरह भी हो रही है, नपुंसक वेद का संक्रमण उच्चम सब चल रहा है, नपुंसक वेद उत्क्रमित होगा बाय द टाइम इसके नीचे के निषेक भी गलते गलते चले जाएंगे, एक ही संक्रमण किए जाना इसके निषेक गलेंगे यानी वो नीचे आएंगे, हम उसको नीचे लाना नहीं, इसे मैं इसकी को मिला, तो ऐसे होते होते उसकी वेद का भी उपशम हो गया, उसका भी अंतर्मुख का दिन गया तो उसके भी उतने नीचे उसके भी गल गए, ये तो जितने समय पास हो गए उसने इसके नीचे गल गए। अब ये गलते गलते ऊपर से ही इसमें आ ही रहे हैं, इसको हम आगा कहते हैं दोनों का, और ये ऊपर चले जा रहे हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। ये कब तक चलेगा, जब तक इसमें दो अवधि काल शेष है,
समझाने के लिए मैं जरा बड़ा कर दी यदि दो आवली में ये कार्य करेगी जब दो आवली भी रहेगी रह जाएगी तो आगाहन प्रत्यावहन बन जाएगा कि द्वितीय अवधि में से पहली अवधि में केवल उद्गीरण होती है। यहाँ तक बात समझ में तो ये जो भी इसकी भी विषय करते करते होते एक अवधि समान का विशेष है। अभी एक अवधि जब शेष रहेगा तो नीचे का जो विषय है वो पूर्ण रूप से उदय में आएगा सारी एक एक करके पूर्ण रूप से उदय में आएगा। ये पूर्ण रूप से उदय में आएंगे पुरुष वेद अपने रूप से ना उदय होगा ना बंद होगा कि उसका अंतिम समय बंद है। और फिर बाद में हमने को देखा था एक समय कम दो आवली और समय क्रोध बचता है ये उचित आवली बचती है ये उचित आवली क्रोध रूप से उदय में आने वाली है। नवक समय क्रोध जो ऊपर में पड़ा है वो क्रोध के उच्चम काल में उसका उच्चम होने वाला है। यहाँ तक बात ख्याल में। अब इसके बाद ये उचित आवली का एक ही विषय क्रोध क्रोध होते होते नष्ट हो जाएगा यानी वो इसके भी उसमें निषेध कर दे पर हमको बता नहीं इसलिए जरा ये बड़ी बता दें। अब ये क्रोध का उदय चल रहा है क्रोध के उदय में गुणशयन युग से रचना की इसमें भी आगा प्रत्यय तो चल ही रहा है। अभी तीनों ही क्रोध एक साथ उत्सर्जित हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्रत्याख्यान संवर्धन क्रोध में संक्रमित हो जाएगी और संवर्धन क्रोध एक संवर्धन मार्ग में संक्रमित होता रहेगा। तीनों का ही अपने रूप से उत्सर्जित चल ही रहा था जब तक तीन आवली बाकी रह जाएगी। जब तीन आवली बाकी रहती है तब क्या पोजिशन है संतुलन अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संतुलन में और प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध है वो अभी संतुलन क्रोध में नहीं जाएगा डायरेक्ट मार नहीं चला जाएगा वो भी अवली भी जाती है तो दो ही अवली बाकी रहेगी तो इसका उपशमने का कार्य तो चल रहा है। फिर जब एक अवली शेष रह जाएगी क्रोध की एक अवली शेष रह जाएगी इसको उच्चिष्ठा की क्रोध का अंतिम समय हुआ जाएगा। क्रोध के अंतिम समय में बंधन कितना हुआ था इसका क्रोध मान मार्ग हो सकता है। देखो अभी ये आवली प्रमाण काल बाकी है क्रोध का आवली प्रमाण काल बाकी है वो अपने रूप से उदय में नहीं आने वाला वहीं पर ऊपर उसके नव समय प्रबंधन पड़ेगा। अब मान में से परमाणु नीचे आकर यहाँ से लेकर इसकी गुणशयनिक रूप से प्रथम स्थिति बनी ये जो यहाँ के विषय के एक एक करके क्रोध है वो मान रूप होकर उदय में आने वाले इसमें यही प्रोसेस करेगा। जब तक उसकी आवली प्रमाण शेष यानी ये नीचे नीचे आते रहे इसलिए हम ऊपर के मिलाएंगे मिलेंगे तो नीचे ही पर हमको दिखाना है इसलिए वो नीचे आते हैं वर्तमान समय की तरफ आते हैं तो ये इसकी आवली बाकी है। जब इसकी आवली बाकी रही तब माया के यह परमाणुओं से यह भी वो गुणशय रूप निषेध करता है उसमें भी ऐसी बातें सब हो गई तीनों प्रकार का वो माया का भी दूषण नहीं का संक्रमण का वो सभी कार्य कर उसके बाद लोग यानी जब माया ये नष्ट होते होते उसकी आवली प्रमाण बाकी रहेगी तब लोग की भी बनेगी ये बादल लोग से यानी स्पर्धक रूप से लोग की प्रथम सिद्धि बनेगी। ये प्रथम स्थिति हमने देखी ना अभी लोग वेदक काल कितना है यहाँ जितना बताया है वो दूसरा है और उसके बाद सूक्ष्म वृत्ति भी ऊपर से आने वाली है वो वन थर्ड पार्ट वो सब मिलकर लोग वेदक काल के लिए है यानी मां के जो माया के जो परमाणु है रुचिष्टावली के इसमें संक्रमित होते होते नष्ट हो जाएंगे। अब ये पूरा लोग वेदक काल है इसमें दो भाग करेंगे ये पहला भाग और ये दूसरा भाग ये सारी स्पर्धक रूप से रचना है जो अभी तक विवर है वो उसका अनुभव कम है परंतु है तो स्पर्धक रूप ये अपने रूप से उदय में भी आ रहे हैं ऊपर बाद में अभी ये सब पूरा कर दे फिर आप प्रश्न पूछना बाद में तो इस तरह से अभी यहाँ इसका उदय भी होता रहा ऊपर उछलने का भी कार्य चल ही रहा। अब जो सेकंड हाफ है उसमें पुष्टि करने का कार्य चलेगा इसको कहेंगे पुष्टि कारक यानी पुष्टि कहाँ बनेगी पुष्टि द्वितीय स्थिति में बनेगा क्योंकि वहाँ कुछ तो परमाणु उपशमित हुए थे जो अभी तक उपशमित नहीं हुए थे उनमें से कुछ परमाणु पुष्टि रूप होगी कुछ तो उतने रूप उपशम भी चलेगा वहाँ यानी सभी काम ये साइमल्टेनियसली में चल रहे हैं तो पुष्टि क्या है वो बाद में देखेंगे पर जब तक इसका उदय चल रहा है तो वहाँ पुष्टि करने का कार्य चल रहा है। जब इसकी एक अवधि प्रमाण काल शेष रह जाएगा, तो फिर हम जरा यह ना समझा दे, ये लोग मानते थे ये लोग क्या अवधि प्रमाण, तब सूक्ष्म पुष्टि के प्रमाण जो ऊपर बने थे उसमें से प्रमाण नीचे आकर फिर प्रथम स्थिति बनेगी सूक्ष्म पुष्टि। वो भी अभी इसके जो उच्चिष्टा वाले बने कहेंगे पर वो अपने रूप से उड़े हैं, यानी अभी इसको पर रूप से उड़े में आने वाले। और ये कब होगा? दसवें गुण स्थान। और ये कब होगा? नवे गुण स्थान। जब इसकी उच्चिष्टा वाली रहेगी उसका अर्थ है नवा गुण स्थान समाप्त होगा, यानी दसवां गुण स्थान शुरू हुआ, ऊपर से सूक्ष्म लोक के परमाणु आएंगे, उसकी जो गुणशैली रूप से रचना हो जाएगी, और वो वहां पर उसका कैसे उदय होगा सूक्ष्म पुष्टि में क्या क्या उदय होगा सब बाद में देखेंगे, यानी पुष्टि और वर्णना का भेद भी बाद में देखेंगे। अंतर में हमने पहले से जो देखा था अभी शॉर्ट में अगर बताना है तो शुरुआत में एक पुरुष ने की स्थिति थी, उससे थोड़ी ज्यादा क्रोध की थी, ये बीतने वाली है। जब इसकी उच्चिष्टा वाली बाकी है तब जाके मान की भी स्थिति बनी थी, जब इसकी उच्चिष्टा वाली बाकी है तब माया की भी स्थिति बनती है, जब इसकी उच्चिष्टा वाली बाकी है तब जाके लोभ की भी बनती है, जब उसकी उच्चिष्टा वाली बाकी रहती है तो सूक्ष्म लोभ की भी उच्चिष्टा कम कम हो जाता है। इस तरह से यानी ये शुरू में जो हमने वो छोटी थी बहुत, और ये ज्ञान बहुत बड़ा, ये ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि सूक्ष्म पुष्टि के बाद भी ग्यारहवां गुण स्थान आने वाला है, जब तक ज्ञान नहीं, और उतरने के समय में फिर वो ज्ञान किस रूप से हो तो फिर अलग प्रोसेस है, वो जब उसका प्रोसेस नंबर आएगा तब उसकी चर्चा। यानी इस तरह से एक की उच्चिष्टा हो गई तब दूसरे की रचना हुई, इस तरह से होगा, ये दोनों एक साथ रचना हुई, पहले उदय भी गया पुरुष वेद का फिर भी चल रही थी, तब जब इसकी आवली बाकी रही तब नई रचना हुई थी मान की, मान की जब आवली बाकी रही तो माया की रचना हुई, माया की जब आवली बाकी रही उसके ऊपर से बताना चाहिए यहाँ से, तब लोक की रचना हुई, इसकी उच्चिष्टा वाली बाकी रही तब सूक्ष्म दृष्टि की रचना हुई। इस तरह से एक के बाद एक पहली स्थिति तैयार होती है और उसका उदय चलता है। केवल क्रोध के उदय से चलने वाले की बात है, मान माया लोक से चलने वाले में बहुत डिफरेंस है, वो बात अगर नहीं गई इतना भी समझ में आए तो बहुत है, हम क्रोध से ही चलेंगे। तो इस तरह से अभी हम यहाँ रुक गए, इसकी बात आगे बढ़ाते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि क्या है और वो उसके उदय में और क्या बात करेंगी, वो अभी हम थोड़ी बात पुस्तक के आधार से देखेंगे और फिर जरूरत पड़े तो बोर्ड में।
अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ प्रश्न है सूक्ष्म पुष्टि किसमें बनेगी, कौन से परमाणु अभी छुट्टे पड़े हैं जो उपशमित नहीं हुए हैं, निषेध की बात कर रही हूँ, सारे जो है संज्वलन क्रोध मान माया सारे उपशमित हो गए, अभी सूक्ष्म पुष्टि बनेगी किसकी, बांदर लोग उसमें भी जो उपशमित नहीं हुआ है वो, उसमें से कुछ परमाणु सूक्ष्म पुष्टि रूप हो रहे हैं और कुछ अपने रूप से ही उपशमित भी हो रहे हैं, एट ए टाइम सब कार्य चल रहा है, उसमें संक्रमण नहीं होगा अभी। हाँ, और प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण का संज्वलन लोभ में संक्रमण होगा, परंतु संज्वलन लोभ अन्य किसी रूप नहीं होगा अभी, क्योंकि वो अनुपूर्वी संक्रमण है, उसका किसी में संक्रमण नहीं होगा। तो अभी ये सूक्ष्म पुष्टि किसमें बनेगी, बादर लोभ की सूक्ष्म पुष्टि बनेगी। अब ये पुष्टि ने क्या, उसका जरा हम यहाँ पुस्तक के आधार से उसकी परिभाषा देखते हैं, पुष्टि कहना किसको, देखिए पेज नंबर है उसकी परिभाषा बनानी, हाँ 195 पेज पर उसकी परिभाषा बताइए, फिर हम लौट के आएंगे पूर्व पेज पर। यहाँ जो नया परेगा है वहाँ लिखा पृष्टि शब्द का अर्थ कहते हैं, है ना, पेज नंबर 195 बीच में जो बोल्ड में लिखा है ना कृषतनु करणे इस धातु से कर्षणम कृष्टि अर्थात कर्म परमाणुओं के अनुभाग शक्ति का घटाना उसका नाम कृष्टि है। हम कहते न क्यों बहुत कृष हो गए यहाँ अनुभाग में कृष जो कम होना अनुभाग की अपेक्षा था। आप समझते हैं पुरुष हो गए समझते हैं क्यों नहीं आप में आपको नहीं समझ में आता आपको हिंदी शब्द नहीं मालूम बहुत पतले हो गए थीन हो गए ये वो कृष्टि है। अथवा कृष्यते इति कृष्टि प्रति समय पूर्व स्पर्धक की पूर्व स्पर्धक यानी जिस फॉर्म में पहले स्पर्धक होया करते थे वर्गणा वगैरह वो जगन्य वर्गणा से भी यहाँ अनुभाग अत्यंत हीन होने वाला है। तो कहते पूर्व स्पर्धक की जगन्य वर्गणा ये जरघन्य हुआ जघन्य करो उसको आपका ऐसा प्रश्न है उपशम करता है तो पुष्टि करने की क्या जरूरत है परंतु जब तक उपशम नहीं किया नीचे उदय भी है तो बादल लोक का उदय है तो बादल लोक का बंध भी तब तक हुआ था और ये दसवा गुणस्थान का नाम क्या है सूक्ष्म उसके उदय में कोई मोहनीय नहीं बंधेगा नहीं तो बंधा हुआ मोहनीय का तो कुछ न तो उदय फिर उसका भी आ जाएगा इसलिए यहाँ सूक्ष्म पुष्टि करके वो सूक्ष्म लोक का उदय होता है वहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरा बंद रही नाम गोत्र वगैरह जो एक प्रकृति बंद है वो तो बंद रही मोहनी का बंद हो जाएगा इसलिए वो सूक्ष्म लोक का उदय चलेगा परंतु बादल लोक का उदय नहीं इसलिए उसके वो मोहनीय नहीं बंधेगा अन्य कर्म बंधेगा क्योंकि सूक्ष्म भी है परंतु वो मोहनीय कर्म है उससे मोहनीय नहीं भी बंधेगा तो भी ज्ञानावरण का बंधन होगा। अब इसे क्यों होता है इसलिए कि उस सवाल ही नहीं हम थोड़ा उसमें अनुमान लगा सकते हैं यानी क्यों होता है यानी किसी जरूरत पड़े इसलिए होता है ऐसा नहीं क्या क्या होता है उसकी यहाँ केवल ज्ञानी के ज्ञान द्वारा जो जाना गया उसकी चर्चा है। ये सहज रूप से होता है कर्मों में ऐसी विशिष्ट अवस्थाएं बनती है उसका यहाँ कथन करने में आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कौन पूछ रहे हैं दसवें में सूक्ष्म सांप्राय नाम कौन सा है नवे गुणस्थान से दसवें और नवे का नाम क्या है बादर सांप्राय। बादर सांप्राय पहले गुणस्थान से नवे तक सारे बादर सांप्राय पर वो बादर सांप्राय का अंतिम गुणस्थान वहां तक बादर लोक का यानी सारे जो क्रोध मानना है सब बादर ही थे परंतु लोक को इसलिए बादर कहते कि उसमें सूक्ष्म लोक और बादर लोक ऐसे दो भेद यहाँ हमने किए हैं इसलिए उसका उदय तो दसवें में ही चलेगा करने का कार्य नौवे में होगा। अब आते हैं अपने पेज पर जहाँ वो पुष्टि की गई थी पेज नंबर 192 वहाँ हमने ये बात देखी थी लोभ वेदक काल पूरा नौवा दसवें का मिलकर लोभ वेदक काल कहने में आता है और हमने उसके लिए आपको एक काल्पनिक संख्या बताई मान लेते 1000 समय वाले दोनों को मिलकर वेदक काल है तो उसमें से हमने क्या किया था पहले 10 से भाग दिया 100 अलग निकाले 900 रहे 900 के तीन समान भाग किए 300 300 300 100 रहे फिर उसके फिर दोबारा 10 से भाग दिया और फिर 90 और 10 हो गए तो 90 है वो पहले 300 में मिला है तो 90 गुणस्थान में जो लोक वेदक काल का फर्स्ट हाफ है उसमें वैल्यू हमने 390 मानी इमेजिनरी मानी पर पद्धत ऐसी है डिविजन करने की। दूसरा हाफ जो 300 वाला समान भाग था उसमें वो 10 में से 9 और 1 ऐसे डिवीजन किए वो 9 उसमें मिला है यानी पहला भाग 390 वाला दूसरा भाग 309 वाला और वो 1 है वो 300 में मिला है तो सूक्ष्म सांप्राय 301 वाला। ये तो बहुत स्थूल समझने के लिए हम आपको दृष्टांत देके समझाया तो पहला आधा भाग यानी 390 वाले जो समय हमने मान लिए थे वहाँ क्या हो रहा है वो बादल लोक का उदय हो रहा है उसमें भी जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोग है वो संज्वलन लोग में संक्रमित हो रहे हैं संज्वलन लोग का संक्रमण नहीं है किसी में तीनों का ही उपशम भी चल रहा है और ऐसे होते होते अभी सेकंड हाफ में क्या होती है वो बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पुष्टि का लक्षण अभी बताया नहीं है अभी 193 क्या कह रहे हैं पुष्टि का लक्षण हमने यहाँ देखा था पेज नंबर 195 पर के हाँ वो जघन्य को हमने करेक्शन किया। पूर्व स्पर्धन की जघन्य वर्गना से भी अनंत गुणाहीन अनुभाग हो, उसका अनुभाग कितना घटा उससे भी अनंत वे भाग होना। जघन्य वर्गना में मिनिमम थी जिसको हमने 100 बताया था आपको, अभी 100 का अनंत भाग कैसा करेंगे पर समझने के लिए समझ लो, वहाँ जितना था अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद उसका भी अनंत भाग घटकर ऊपर की पुष्टि हुई। पुष्टियाँ भी बहुत सारी होने वाली है तो उसमें भी ऊपर से देखे, ये ऊपर जघन्य वर्गना थी उसका अनंत भाग अनुभाग की अपेक्षा अनंत भाग वो तो ऊपर की यानी फर्स्ट पुष्टि ऊपर की, उसके अनंत विभाग प्रमाण ऊपर से दूसरी पुष्टि, उसके अनंत विभाग ऊपर से तीसरी पुष्टि, उसके अनंत विभाग ऊपर से चौथी पुष्टि, ऐसे पुष्टि भी कितनी होगी। तो एक स्पर्धक में जितनी वर्गना अनंत होती है उसके अनंत विभाग प्रमाण एक समय में पुष्टि तैयार होगी। वो वर्गना जैसे पहले वर्गना थी उनको वर्गना कहते थे, इनको पुष्टि कहते, बात वैसी है। देखो जब हम निषेक रचना देखते थे ऐसी आड़ी लाइन वर्गना के लिए भी आती है, पर वो निषेक के साथ बिल्कुल वो निषेक की वो मटा दो अपना इमेजिनेशन, निषेक में आप निषेक में इस पर अनुभाग मत ढूंढा करो, प्रत्येक निषेक में सारे ही वर्गना और स्पर्धक पाए जाते प्रत्येक निषेक। जब हम अनुभाग की रचना बताएंगे तो पूरी अनुभाग की रचना अपने दिमाग में अलग सेट करना, उसमें वर्गना यानी मिनिमम अनुभाग वाले परमाणु, वो कौन से निषेक में है वो हम बात नहीं कर रहे, सभी निषेकों में ऐसे पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही निषेक में जघन्य स्पर्धक है दूसरे में ज़्यादा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं, जितने निषेक है उतने सभी में ये जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी वर्गनाएं सभी अनुभाग सभी स्पर्धक सब कुछ पड़ा है। यानी जब हम केवल अनुभाग की बात करते हैं तो वो कौन से निषेक में है वैसा वो इमेजिन करने की जरूरत नहीं, वो अंतर के नीचे के ऊपर के सर्वत्र है क्योंकि स्पर्धक तो सर्वत्र पड़े। परंतु ये पुष्टि का करने वाला कार्य कहाँ हो रहा है, द्वितीय स्थिति में, क्योंकि पहले स्थिति में तो बादल लोग रूप से उदय में चल रहा है। पहली स्थिति जो है पहली स्थिति में अभी नवागुण स्थान चल रहा है, हमने वो लोक की यहाँ जो लास्ट में अंतिम बताया ना लोक की जो प्रथम स्थिति बनी थी वो बादल लोक की है, उसका फर्स्ट हाफ तो बीत गया है अब सेकंड हाफ चल रहा है। और उस समय में द्वितीय स्थिति में पड़े हुए जो लोक के बादल लोक के परमाणु है उनका अनुभाग घटकर वहाँ पर ये सूक्ष्म पुष्टि रूप कार्य चल रहा है। अनुभाग इतना घट कुछ परमाणुओं का, सभी का नहीं, कुछ तो बादल लोक रूप से उपशमित हो रहे वहाँ और कुछ सूक्ष्म पुष्टि रूप हो रहे। और पहली स्थिति में बादल पुष्टि रूप से बादल पुष्टि ने बादल लोक रूप से उदय भी चल रहा है, सभी अनेक कार्य ऑटोमेटिक एट ए टाइम चल रहे हैं। ये पुष्टि करने का कार्य उसकी मुख्यता से हम कह रहे हैं यहाँ पुष्टि करने का कार्य चल रहा है इसलिए उसको पुष्टि कारक जीव कहते हैं। पर ये करने का प्रथम स्थिति में कोई पुष्टियाँ नहीं बन रही क्योंकि प्रथम स्थिति में है वो उदय में आती है, ये कहाँ बन रही है द्वितीय स्थिति में बन रही। द्वितीय स्थिति यानी निषेक की अपेक्षा और वहाँ जो परमाणु स्थित है उनका अनुभाग घटकर उसमें अत्यंत हीन अनुभाग वाली जो रचनाएं यानी वर्गनाएं वगैरह होगी उस वर्गनाओं को भी हम पुष्टि कहेंगे। इनका नाम वर्गना नहीं है, वर्गना तो वो जब वो स्पर्धक रूप थे तभी उसको वर्गना कह रहे थे। बात तो वैसी है जैसे वर्गना में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें अनंत जो कर्म परमाणु है हर एक का अपना अपना अविभाग प्रतिच्छेद है, पुष्टि वर्गना के नीचे लिखेंगे वो भी आड़ी लाइन दिखाएंगे और उसमें अनुभाग कितना है अनंत गुणाहीन है। अब इसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे पुस्तक में से, देखो पेज नंबर 193 अब वो दसवें गुण स्थान में बताएंगे। आगे के प्रश्न पूछो मत, ये समझने की कोशिश करो पहले क्योंकि आप थोड़े जल्दी समझकर आगे के प्रश्न पूछते अच्छी बात है, परंतु नहीं तो कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जब हम सबके साथ यहाँ पढ़ रहे हैं और सब लोग इतना जल्दी वो कैच नहीं पाते तो हमको सबको साथ में चलना है, जो विषय चलना है उसको चलने दो। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आने वाले हैं, दसवें गुणस्थान में उदय किस रूप से होता है, प्रति समय कैसे बदलता है, वो सब दसवें गुणस्थान में आने वाली बात है। अब जो विषय चल रहा है उसको अच्छी तरह से आप सुन लो। 283 गाथा की टीका पेज नंबर 193। देखो विषय इतना कठिन है और एक बार सुनने समझने से पढ़ने से कुछ भी ख्याल में नहीं आता, इसलिए हम बारंबार इसको रिपीट करें। भले विषय कुछ रह भी जाए कोई हर्जा नहीं है, परंतु जितना हमने पढ़ा है उसको हम अच्छी तरह से पक्का करना चाहते हैं। इतना पक्का हो जाए तो उतरते समय भी जो कुछ कार्य होने वाला है या जो दर्शन होने वाला है वो सहज रूप से समझ में आ जाएगी। 283 की टीका, संज्वलन लोक की प्रथम स्थिति के प्रथम अर्ध को, ये समझ में है ना, हमने पहला फर्स्ट हाफ पूर्वोक्त प्रकार से व्यतीत करके वो बीत गया था। द्वितीयार्ध के सेकंड हाफ प्रथम समय में मिला, पेज नंबर 193 टीका की सेकंड लाइन। द्वितीयार्ध के यानी सेकंड हाफ के प्रथम समय में संज्वलन लोक के अनुभाव सत्व में, अनुभाव सत्व में सत्ता में जो अनुभाव पड़ा है, अपकर्षण द्वारा, अपकर्षण यानी अनुभाव के घटने को यहाँ अपकर्षण करना। अभी वो द्वितीय स्थिति में से पहले स्थिति में आते हैं वो अपकर्षण की बात नहीं, यहाँ स्थिति अपकर्षण की बात नहीं है, अनुभाव के अपकर्षण की बात है, घटने को अपकर्षण कहते हैं। तो अनुभाव का यहाँ अपकर्षण हो रहा है, पूरा सत्व खलास नहीं। अनुभाव कांडक में ऊपर के अनेक स्पर्धक नष्ट होते थे, अभी पूरे स्पर्धक नहीं नष्ट हो गए, उन स्पर्धकों में से कुछ परमाणुओं का अनुभाव घट कर सभी में से निकलेंगे। जैसे हम सभी निषेकों में से अपकर्षण करके नीचे निषेक रचना या नीचे के निषेकों में देते थे, अब क्या होगा, सभी स्पर्धकों में से कुछ परमाणु उनका अनुभाव घट कर अभी पुष्टि रूप से नहीं रचना तैयार हो जाए, अनुभाव की अपेक्षा रचना, निषेकों को अभी भूल जाओगे, यहाँ निषेकों की कोई बात नहीं हो रही। जब ऊपर और नीचे कहेंगे अनुभाव की अपेक्षा ऊपर नीचे समझना, ये बहुत आवश्यक एंड इम्पोर्टेंट बात है, नहीं तो कुछ ख्याल में नहीं आएगा, उसके साथ कंफ्यूजन होता रहेगा। देखो अवकर्षण द्वारा सूक्ष्म पुष्टि करता है उसका विधान कहते हैं, यानी ये पुष्टि कारक कहलाता है। अभी उदय किसका चल रहा है, वो बादल लोग का सेकंड हाफ में है ना, नवम गुणस्थान चल रहा है, नवे गुणस्थान का अंतिम पोर्शन चल रहा है, तब बादल लोग का उदय भी चल रहा है जो स्पर्धक रूप से है, भले उसका अनुभवहीन है परंतु है तो स्पर्धक रूप से वर्गना रूप से। और अभी इस समय ये जो अनुभाव घटने का जो कार्य हो रहा है, पुष्टि बनने का कार्य, वो द्वितीय स्थिति में पड़े हुए परमाणु में हो रहा है। पहली स्थिति में कोई सूक्ष्म पुष्टि के परमाणु नहीं है। अब आगे संज्वलन लोक के अनुभाव सत्व में जघन्य अनुभाव सहित जो परमाणु, उसमें अनुभाव के अविभाव प्रतिच्छेद जीव राशि से आनंद गुणा है, जिसको हमने पहली वर्गणा कहा। ऊपर पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक है और एक एक स्पर्धक में वर्गणा अनंत है। वर्गणा किसको कहते हैं, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए जो लॉट है परमाणु के, उनको वर्गणा कहते हैं। एक एक वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु होते हैं, एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस, नीचे की उसमें कम है ऊपर की अधिक है, जैसे हमने 100, 101, 102 ऐसा देखा था ना वैसा। अब कहते हैं कि वो सबसे मिनिमम जो वर्गणा है उसमें जो परमाणु है उसमें अविभाग कितना है, मिनिमम है, वो भी कितना है, तो जो जीव राशि है, जो संख्या जीव राशि है नहीं, संख्या उसकी जो अनंत है उससे भी अनंत गुणा, इसमें उतने इतने शक्ति के अंश है। अभी उसमें कितना घटेगा वो अभी यहाँ बताएंगे। संख्या है मगर वो शक्ति भी यूनिट्स में गिन रहे हैं, कितने यूनिट्स, तो जीव राशि की जो संख्या है अनंत, उससे अनंत गुणा वाला जो पर्टिकुलर अनंत, मध्यम अनंत अनंत का कोई भेद है, तो इतने मध्यम अनंत अनंत प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद वो जघन्य वर्गणा में है, ये उसका अर्थ होता है। एक लाख की 25 लाख हो जाएगी, अनंत गुणा करना है, ये तो संख्या बतानी है ना, अनंत उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, कितने अनंत है, अभी अनंत भी अनंत प्रकार के हैं, तो उसको पर्टिकुलर अनंत बताया, हमें जो मालूम है जीव राशि वाला अनंत है उससे अनंत गुना, इतना कहिए। इसको यानी ये जो जघन्य में जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद है इसको जघन्य वर्ग कहते हैं, क्योंकि एक परमाणु को एक वर्ग कहा और उसमें इतने इतने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, जिनमें जिनमें इतने अविभाग प्रतिच्छेद है उन सबको एक साथ अगर हम कहना है तो उसको हमें ये वर्णना है, इक्वल अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्ग यानी परमाणु को एक लाइन में लिखेंगे उसका नाम है वर्गण, उसका नाम है प्रथम वर्गण। संज्वलन लोक के सत्तारूप सर्व परमाणुओं को, सत्तारूप परमाणु वहां स्थिति में देखते तो द्वितीय स्थिति में पड़े थे ना इतने सारे जितनी सत्ता में है, परमाणु की सत्ता के नंबर कुछ अनुभाग या निषेक में चाहिए नहीं होगी। फिर से हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो उनको हाइट वाइज नंबरिंग करो या मार्क वाइज नंबरिंग करो या कैसे भी करो या अल्फाबेटिकल करो तो 50 के कम होगी कि 49 होगी, 50 के 50 जो परमाणु निषेक में पड़े हैं द्वितीय स्थिति में उनकी संख्या तो निश्चित है। अभी उनको अभी हमको अनुभाग की अपेक्षा सोचना है, परमाणु की संख्या तो उतनी ही है पर अनुभाग की अपेक्षा उसकी रचना अलग होगी। जब स्थिति की अपेक्षा रचना करते हैं तो एक एक समय के डिफरेंस से असंख्यात होते हैं, भले वो कितने भी सागर भी क्यों ना हो उनकी संख्या असंख्यात है। जब अनुभाग की अपेक्षा रचना करते वर्गणाओं की, एक स्पर्धक में ही अनंत वर्गणा होती है और ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं तो वे ही जो परमाणु निषेक रूप से थे सत्ता में उसको भी अभी हम अनुभाग की लाइन बताएंगे तो कितने अनंतानंत हो जाएंगे इसको इमेजिन करो। अभी यहाँ नया बंध लोक का स्पर्धक रूप से हो, बादल लोक का बंध हो रहा है यहाँ। संज्वलन के सत्ता रूप सर्व परमाणुओं को अनुभाग संबंधी कुछ अधिक डेढ़ गुणानी का भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतने प्रथम वर्गणा में परमाणु है। वो डेढ़ गुणानी भूल जाओ, हमें वो पहली वर्गणा में कितने परमाणु है उसकी संख्या निकालने का ही नाम, निषेक में भी पहले निषेक में कितने परमाणु होते हैं दूसरे में वो नाम निकालने के, वो जिसको कहे स्थिति की अपेक्षा डेढ़ गुणानी अलग है अनुभाग की अपेक्षा अलग है। डेढ़ गुणानी क्या है वो अभी हम सोचेंगे नहीं, उसका विषय अभी नहीं लेंगे। यहाँ इतना ही बात है कि ये एक वर्गणा में परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं उसका तरीका है। तो इतने परमाणु उस पहली वर्गणा में, पहली वर्गणा का अर्थ है मिनिमम अनुभाग वाली, दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, तीसरे में एक 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 अधिक अधिक, फिर दूसरा स्पर्धक शुरू होता है। इस तरह से हमने देखे सभी वर्गणाओं को, जैसे हम निषेक में आड़ी लाइन बताते हैं सभी पहली वर्गणा से अंतिम वर्गणा तक सभी वर्गणा एक ऐसी लाइन में अगर हम उसको रखेंगे तो नीचे की वर्गणा में परमाणु ज्यादा है ऊपर थोड़े कम है थोड़े कम है थोड़े कम है थोड़े कम है। ये थोड़े कम की बात वो निषेक की अपेक्षा नहीं अनुभाग की अपेक्षा, यानी अनुभाग की अपेक्षा अगर हम ऐसी वर्गणाओं की रचना करेंगे तो नीचे की वर्गणा में परमाणु अधिक और वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद कम, ऊपर की वर्गणाओं में अभी निषेक नहीं कहे ऊपर की वर्गणाओं में अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा और परमाणु की संख्या कम। ये कम और ज्यादा ये अनुभाग की अपेक्षा बताते हैं। निषेक की ओर देखेंगे तो प्रत्येक निषेक में अभी प्रत्येक निषेक जैसे आड़े निषेक में मान लेते हैं ऐसे आड़ा निषेक प्रत्येक निषेक में उत्कृष्ट अनुभाग से जघन्य अनुभाग तक सभी वर्गणाएं पड़ी। अब इसी को ऐसा करो अनुभाग की अपेक्षा तो जघन्य वर्गणा यहाँ आ जाएगी उत्कृष्ट वर्गणा यहाँ आ जाएगी, समझ लें ना। वो कहाँ कौन से निषेक में उसे कुछ लेना देना है, जो निषेक ऐसा पड़ा था उसमें यहाँ जघन्य वर्गणा सोच लो और यहाँ उत्कृष्ट वर्गणा सोच लो। अब इसको ऐसा कर दो तो यह है जघन्य वर्गणा यह है उत्कृष्ट वर्गणा। अब क्या होगा ये सभी वर्गणों में से कुछ परमाणु जिनकी पुष्टि बननी है सभी में से कुछ निकाले, अब उनका अनुभाग इतना हीन हो गया ये जो जघन्य वर्गणा थी उसके भी अनंत वे भाग प्रमाण अनुभाग वाली यहाँ पहली पुष्टि बनी, उसके अनंत वे भाग प्रमाण नीचे की ऊपर से नीचे की और दूसरी पुष्टि, उसके अनंत वे भाग तीसरी पुष्टि, ऐसे एक समय में पुष्टि कितनी बनेगी तो एक स्पर्धक में जितनी अनंत वर्गणा होती वो अनंत वर्गणा जो है उस अनंत का अनंत भाग इतनी पुष्टि एक समय में बनेगी, यानी एक पुष्टि से दूसरी पुष्टि में अनंत वा भाग यानी ऊपर से नीचे अभी इतनी पुष्टियाँ भी अनंत बनेगी तो उसमें कितना 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 अनुभाग कम हो गया। ये पहले समय में पोजीशन हो गई कि सभी स्पर्धकों में से सभी वर्गणाओं में से कुछ परमाणु दिए और उनका जैसे हम स्थिति में देखते थे यहाँ केवल हमको अनुभाग में सोचना है तो उनका अनुभाग इतना घटा और उसमें से नई पुष्टियाँ तैयार हुई, वहाँ कोई पुष्टि नहीं थी और तैयार हुई जैसे हम निषेक में था कि अंतर में कुछ नहीं था और नए निषेक बनने हैं तो वहाँ बहुत सारे परमाणु देने पड़े। अब यहाँ पुष्टि थी ही नहीं और बिल्कुल नई सी रचना होनी है पुष्टि रूप से, उसका अर्थ क्या है? वो नीचे की जो वर्गणा थी उससे भी पुष्टि में परमाणु ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमेशा रचना इसी होगी ऊपर में परमाणु कम और नीचे ज़्यादा। अब नीचे की ओर गए उसका अर्थ क्या है? पुष्टि बनी तो अनुभाग अनंत वहाँ भाग और परमाणु अधिक, उसके नीचे दूसरी पुष्टि में ऊपर से नीचे चले जाओ, दूसरी पुष्टि में अनुभाग और अनंत वाभाग और परमाणु और अधिक, ऊपर से तीसरी पुष्टि में अनंत वाभाग अनुभाग और परमाणु और अधिक, तो एक समय में इतनी पुष्टियाँ तैयार हो जाए एक समय में। और ऐसा पुष्टि करने का कार्य अंतर्मूर्त तक चलेगा सेकंड हाफ में, हर समय में नई नई पुष्टियाँ बनती चली जाएगी, एक के नीचे दूसरी, उसके नीचे तीसरी, उसके नीचे, इस तरह से एक एक ग्रुप चलता चला जाए, उसका भी यहाँ हम वर्णन देखेंगे। हो गया समय? हाँ, जीव का परिणाम अपने अंतरंग में, वो तो गुप्त है, अपने आनंद का अनुभव कर रहा है, जीव को कुछ टेंशन ही नहीं ना। जगन्य वर्गणा ही था, जगन्य वर्गणा पहले से अनादि से जगन्य वर्गणा रूपी था, वो मान लेते हैं किसी का स्वर इतना अनुभव, जैसे लता है, दारू है, शैला अस्थि, कोई भी अनुभव किसी का क्यों नहीं हो। जैसे आप पैसे गिनते हैं, आपके पास 1000 स्किन होते हैं, इन्हें 1000 रुपये है और इनके पास 500 है, आपके पास 50 है, तो आप भी 1 से 50 को गिनेंगे, वो भी 1 से 500 तक गिनेंगे, आप 1 से 1000 तक, एक की वैल्यू सबकी समान है। ऐसे ही जगन्य वर्गणा की वैल्यू सबकी समान है।
लेकिन अभी वो 1 रुपये में से अभी हम पैसे में आए
नहीं, पैसे में अभी और फिर उसमें से कौड़ी में चला जाओ और उदय का अभी नहीं, उदय आएगा 10वें गुणस्थान, अभी नहीं, वो 10वें में उदय के बहुत कुछ नियम है, सामान्य रूप नियम वहाँ लागू नहीं होते। आपका प्रश्न लिख के रखो, 10वें गुणस्थान में पूछना। अभी तो बादल लोग जो पहली, देखो अभी जो प्रथम स्थिति में निषेक की अपेक्षा पहली स्थिति में जो बादल लोग के जो सेकंड हाफ है उस रूप से उदय चल रहा है, और जो पुष्टि करके जो स्टोर हो रहा है वो द्वितीय स्थिति में स्टोर हो रहा है, पुष्टियाँ सब द्वितीय स्थिति में पड़ी है, उसमें कोई भी उदय रूप नहीं हो रहा है। यहाँ उदय रूप अनुमान की बात चल रही, वो बादल लोग रूप से यहाँ उदय में आ रहा है, सब चल रहा है। स्थिति बंध अभी भी हो रहा है कि नहीं? मोहनीय का लोभ का बंध हो रहा है, माया का रुक गया था, अभी अकेला लोभ है ना। देखो माया और लोभ, माया के अंतिम समय तक माया और लोभ दोनों बंद है, अभी अकेला संज्वलन लोभ का बंध हो रहा है मोहनीय में, ज्ञानावरण वगैरह बंद रहे उसकी बात नहीं है। देखो यहाँ फिर से जरा थोड़ा टाइम है, 5 मिनट अभी देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तो पहले ही वर्गणा में परमाणु कितने उसका उन्होंने वो गणित बताया, वो गणित में हमको नहीं जाना, पहली वर्गणा में परमाणु अधिक है, वो चय का अर्थ होता है डिफरेंस, फिक्स डिफरेंस को कहते हैं चय। नीचे की वर्गणा में परमाणु ज्यादा है, सेकंड वर्गणा में परमाणु कितने हैं? 1 चय कम, फिक्स डिफरेंस है, थोड़ा 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 घटता है, वो जो थोड़ा थोड़ा घटने का प्रमाण है वो फिक्स है, जो थोड़ा 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 घटते हुए जब आधा प्रमाण हो जाता है तो कहते हानि होगी, कितनी? आधा हो गया ना, आधा होने को कहते 2 गुना हानि, उसी को कहेंगे गुणहानि, गुणहानि गुणहानि जो शब्द आता है, 2 गुणा हानि यानी आधा होने को 2 गुणा हानि कहते हैं। पहली वर्गणा में परमाणु ज़्यादा थे, थोड़े 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 कम होते होते अनंत जो चले जाएंगे तब जाके वो उनकी संख्या आधी होगी। जब संख्या आधी होती है तब तक के सभी वर्गणाओं को मिलकर यानी वो जो स्पर्धक भी उसमें आ गए, अनंत स्पर्धक आते हैं, तब जाके कहेंगे ये अनुभाग की 1 गुणहानि हुई। फिर चय भी आधा होगा, डिफरेंस भी आधा होगा, और वो भी घटते घटते और ऊपर चला जाए, उसका भी आधा होगा, ये दूसरी गुणहानि है। गुणहानि का अर्थ होता है जो नंबर ऑफ परमाणु एक प्रति वर्गणा आधे आधे होते होते जब पहली वर्गणा से आधे होते हैं जिस वर्गणा में, वहाँ तक के सभी स्पर्धकों की संख्या को कहेंगे एक गुणहानि, दूसरी गुणहानि, तीसरी गुणहानि, न्यूहान की अपेक्षा अनंत गुणहानियाँ होंगी। अब ये गुणहानि और चय वो कोई अभी अपना विषय नहीं है, वो अलग है। वो तो कितनी संख्या है, क्या रचना है, उसको बताने के लिए सब शब्द आ गए। यहाँ कहते हैं पूरा तत्व द्रव्य की वैल्यू कैसे निकालना, वैसे पूरे तत्व द्रव्य को डेढ़ गुणहानि से भाग किया था तो पहली वर्गणा का संख्या है, पहली वर्गणा को डेढ़ गुणहानि से गुणा करो तो पूरे तत्व द्रव्य की संख्या आती है, बस इतना ही यहाँ लेना। इसमें से द्रव्य को अपकर्षण करके जो टोटल नंबर ऑफ परमाणु है सत्ता में पड़े हुए दूसरे स्थिति में जो उपशमित नहीं हुए है बाकी स्त्री है उसमें से अभी जो सूक्ष्म पुष्टि बनी है तो कहते उस वर्ग द्रव्य को अपकर्षण करके अनुभाग की सूक्ष्म पुष्टि करता है। सूक्ष्म पुष्टि करता है उसका अर्थ क्या है, जघन्य स्पर्धक यानी पहला स्पर्धक नीचे वाला स्पर्धक उसकी प्रथम वर्गणा यानी फॉरमोस्ट वर्गणा, एक स्पर्धक में अनंत वर्गना होते, वर्गना ने अभी ऐसे आड़ी लाइन में देखेंगे तो सबसे नीचे के स्पर्धक के सबसे नीचे की वर्गना मिनिमम पॉसिबल अनुभाग वाले परमाणुओं का लॉट उसमें लता समान अविभाग प्रतिच्छेद है। लता नारू ऐसे ही गिनते ना तो उसमें प्रत्येक की जघन्य वर्गना सबकी समान है, वो लता समान अविभाग है। उसके नीचे उनसे भी अनंत गुणाहीन अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेद रूप सूक्ष्म पुष्टि होती है। जो मिनिमम वो पहली वर्गणा में जो अविभाग प्रतिच्छेद थे जो अनुभाग था उसका भी अनुभाग इतना कितना घटता है, अनंत गुणा घटता है ना, वो अनंत विभाग प्रमाण रह जाता है, एक समय में इतना घटेगा। पहले तो अनुभाग कांडक घातों में ऊपर के स्पर्धकों का घात होता था, अभी वैसा नहीं हो रहा है, सभी स्पर्धकों में से कुछ परमाणु उसका अनुभाग इतना घटता है कि वो जघन्य वर्गणा से भी अनंत वे भाग प्रमाण होकर उसकी पुष्टि तैयार होती है। केवल एक दो पुष्टियाँ नहीं होती है तो कितने होती है, एक स्पर्धक में जो वर्गणाओं का प्रमाण है कितना है, अनंत है, एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी अनंत है, उसके अनंत वे भाग प्रमाण उन सूक्ष्म पुष्टियों का प्रमाण जानना कब, एक समय में, एक समय में पुष्टि कितनी बनी, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा थी उसके अनंत वे भाग प्रमाण बनी, दूसरे समय में उससे कम बनेगी उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण बनेगी परंतु उसका अनुभाग तो और अनंत गुना बढ़ता होगा। ये हर समय नई नई पुष्टियाँ नीचे नीचे की ओर हम दिखाएंगे, उसको भी हम बोर्ड पर देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि कैसे एक के नीचे वो दूसरी पुष्टियाँ होगी, फिर तीसरे समय में और नई नई पुष्टि होगी, पहले जो होगी उसको कहेंगे पूर्व पुष्टियाँ, उसके नीचे और हीन अनुभाग वाले कहेंगे ये अभी नई नई हो गई अपूर्व पुष्टियाँ, वो पूर्व पुष्टियाँ चलेंगी। अरे हर समय में सभी स्पर्धकों से परमाणु उसका अनुभाग घटकर नीचे 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 ने अनुभाग की अपेक्षा नीचे आएंगे और उसकी पुष्टियाँ बनती चली जाएगी एक के नीचे दूसरी दूसरी, यानी कुछ परमाणुओं तो नई पुष्टि रूप से उसका अनुभव हुआ, कुछ परमाणुओं का पूर्व पुष्टि रूप से अनुभव होगा। जैसे हम निषेकों में द्रव्य देते ना कुछ उदयावली में कुछ गुणश्रेणी में और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में, ऐसे यहाँ पर भी करना, कुछ परमाणु तो पुष्टि रूप से हो जाएंगे, कुछ परमाणु जो ऊपर के स्पर्धकों में थे उसके जो वर्गणा नीचे की वर्गणा के समान अविभाग प्रतिच्छेद हो जाएगा। इस तरह से अनुभाग में भी हम जो रचना बताएंगे वर्गणा की हम बोर्ड पर बाद में देखेंगे तो ऊपर से परमाणु घटकर वो कुछ वर्गणा पुष्टि रूप से हो जाएगी, कुछ वर्गणा के बाजू में प्री एग्जिस्टिंग जो वर्गणा थी उसके समान उसका अनुभाग हो जाएगा। इस तरह से ये कार्य चलता ही रहता है, बाय दैट टाइम वहाँ बादल लोक को उपशमने का भी कार्य चल रहा है, कुछ परमाणुओं का सूक्ष्म पुष्टि रूप होने का भी कार्य चल रहा है। इस तरह यहाँ जब तक ये बादल लोक का उदय है तब तक ऊपर ये कार्य होता रहता है, इसको कहेंगे ये सूक्ष्म पुष्टि का कारक जीव है। जब तक ये इच्छावली बाकी रही तब तक ये कार्य चल रहा है, यानी कुछ परमाणु बादल लोक से उपशमित हो जाएंगे, कुछ सूक्ष्म पुष्टि किए हुए हैं वहाँ, कुछ नवक समय प्रबंध भी बादल लोक का रहेगा क्योंकि अभी भी बंद पुष्टि रूप से बंद नहीं होता, बंद तो बादल लोक रूप से होगा, वो भी बाद में उपशमित हो जाएगा, उसकी चर्चा भी थोड़ी देर के बाद हम करते हैं, अभी आधा मिनट बाकी है। एक यहाँ 204 पेज निकालना, 204 उसमें एक करेक्शन बताना चाहते हैं। 292 गाथा की टीका। वो मैं वाक्य पढ़ती हूँ, पुष्टिकरण काल का। पुष्टि करने का काल नवे के अंत में चल रहा है, जो अभी हमने चर्चा की। जब तक द्विचरम समय दिखा है ना, समय नहीं लेना, द्विचरम स्थिति बंध लेना, क्योंकि एक स्थिति बंध अंतर्मुक्त तक होता रहता है। द्विचरम समय में अन्य स्थिति बंध और अंतिम समय में अन्य स्थिति बंध ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्थिति बंध एक एक समय में पलटता नहीं है। हाँ, द्विचरम स्थिति बंध करना समय के बदले, समय शब्द काटो, कहाँ का 292 की टीका, ये टीका में पहली लाइन, द्विचरम स्थिति बंध प्राप्त हो तब तक। ऐसे लास्ट लाइन, उसी तीसरी लाइन, उसी टीका की, उसका भी स्थिति बंध, उस द्विचरम स्थिति बंध तक करो, समय तक नहीं, स्थिति बंध तक। थर्ड लाइन यह लिखा ना, संज्वलन लोभादि का भी स्थिति बंध उस द्विचरम समय तक नहीं, स्थिति बंध तक। और उसके ऊपर की जो 291 की टीका है, देखो उसकी सेकंड लाइन, वो मैं पढ़ती हूँ। देखो, उसको संख्यात का भाग देकर वहाँ बहुभाग व्यतीत होने पर, वहाँ अंत समय में लिखा है ना, तो अंत में लिखो, अंत समय में भी उतना ही स्थिति बंद होगा, परंतु वो अंतिम जो लॉट, अंतिम जो अंतर्मुक्त है, उतना का उतना स्थिति बंद होता है। इसलिए अंत समय में नहीं, अंत में लिखो, अंत में समय केवल काट दो, अंत में संज्वलन लोक का अंतर्मुक्त मात्र। 291 की टीका सेकंड लाइन लास्ट, अंत समय में के बदले अंत में इतना ही लिखो। एक्चुअली ओरिजिनल हिंदारे में अंत समय में लिखा था, परंतु वो घटित नहीं हो रहा है अंत समय में, अंत में लिखना अच्छा है। 205 में भी पहली लाइन में पुष्टिकरण काल के अंत में लिखो, अंत समय में नहीं। अंत समय में उतना ही बंद होगा, परंतु वो अंतिम अंतर्मुक्त तक चलता रहेगा, इसलिए समय लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो हमें ऐसा लगता है कि अंतिम समय में वो कम होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ मूल गाथा में भी पुष्टि अद्धा चरमे, चरमे चरम समय में नहीं लिखा, चरमे इतना ही लिखा। आगे भी कुछ है, परंतु वो बाद में देखेंगे, ये दो तीन तो अभी आपको बता देंगे, अभी यहीं रुकेंगे हम। बोलो चोरी चोर भगवान।